संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। यदि वो स्वयं को जाने पहचाने और स्वयं में ही जम जाए रम जाए तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। इसकी चर्चा अपन ने कल आरंभ की थी और जिसमें रिक्शे वाले के उदाहरण के माध्यम से यह बात सिद्ध की थी कि ऐसा संभव है कि हमारा आत्मा स्वभाव से अभी भगवान हो और पर्याय में प्रकट रूप से भगवान बनना उसका अभी बाकी हो। वस्तुतः बात यह है, महावीर के अनुसार भगवान दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे भगवान जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं। हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां विराजमान हैं, जो भगवान विराजमान हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं, वे भगवान नहीं, उनकी मूर्तियां हैं। आदिनाथ से लेके महावीर तक चौबीसों तीर्थंकर भगवान तो अभी सिद्धशिला में विराजमान हैं। ये मंदिरों में विराजमान उनकी मूर्तियां हैं। एक वो भगवान जो हमारे इस देह रूपी देवालय में विराजमान हैं, वे और कोई नहीं, हम स्वयं हैं, हमारा आत्मा ही है। वह स्वभाव से भगवान तो है लेकिन उसे पर्याय में भगवान बनना अभी बाकी है। और अरहंत और सिद्ध भगवान जो सिद्धशिला में विराजमान हैं, वे स्वभाव से भी भगवान हैं और वर्तमान में पर्याय में भी भगवान बन गए हैं और उनकी मूर्तियां हम मंदिरों में विराजमान करते हैं। ये भगवान बनने का उपाय क्या है, हम कौन से भगवान के आश्रय से भगवान बनेंगे इन दो भगवानों में, तो बात ऐसी है कि वो जो देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा है, उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, उसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान और उसके ध्यान करने का नाम सम्यक चरित्र है। और भगवान बनने का उपाय यही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र है। लेकिन ये उपाय हमें उन भगवानों ने बताया है जिन्हें हम प्रकट रूप से पर्याय वाला भगवान कहते हैं और जिनकी मूर्तियां हमारे मंदिरों में विराजमान हैं। ये रास्ता उन्हीं ने हमें दिखाया है कि तुम अपने भगवान आत्मा को जान, तुम अपने भगवान आत्मा को पहचान, तुम उसमें ही जम जा, उसमें ही रम जा, तुम स्वयं हम जैसा ही प्रकट रूप से पर्याय में भगवान बन जाएगा। ये जो मंदिरों में मूर्तियां जिनकी विराजमान है, उन भगवानों के दर्शन का नाम है देव दर्शन। और ये देह रूपी आत्मा में विराजमान जो भगवान हैं, देह रूपी मंदिर में विराजमान जो भगवान हैं, उन भगवान का दर्शन का नाम है आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन। मंदिर में विराजमान भगवानों के दर्शन से सातिशय पुण्य का बंध होता है और इस देह में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन से किसी कर्म का बंध नहीं होता है, बल्कि कर्म बंधन कटते हैं। जब मैं ये बात कहता हूँ कि मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन से सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो यह प्रश्न सहज ही खड़ा होता है कि ये सातिशय पुण्य क्या है। ये जिस पुण्य के उदय से हमको ये खाना पीना उठना बैठना की सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, भोजन सामग्री प्राप्त हुई है, मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव प्राप्त हुए हैं अच्छे, ये सब साधारण पुण्य के फल हैं। ये भी तब कि जब ये अनुकूल हों, यदि ये प्रतिकूल हों, पुत्र आज्ञाकारी न हो, पत्नी प्रतिकूल आचरण करने वाली हो, तो वे उस साधारण पुण्य के भी फल नहीं हैं। अनिष्ट संयोग होने से एक प्रकार से पाप के ही फल हैं। तो ये पांच इंद्रियों की अनुकूल जो भोग सामग्री है, जिसे हम धन संपत्ति कहते हैं, कुटुंब परिवार कहते हैं, ये सब हमें उस साधारण पुण्य का फल है, सातिशय पुण्य का फल नहीं, जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन पूजन से प्राप्त होता है। वो सातिशय पुण्य का फल तो हमें अपने आत्मा का कल्याण करने के निमित्त मिलना, ऐसे साधन मिलना, ऐसे सद्गुरु का समागम होना जो हमें आत्मा की बात समझा सके और समझाए, ऐसे सत्शास्त्रों का प्राप्त होना कि जिनमें भगवान आत्मा का स्वरूप बताया गया हो और जिन्हें पढ़कर हम अपने की दिव्य ध्वनि का लाभ सुनने का मौका मिलना, जिससे देशना लब्धि प्राप्त होकर हमें सम्मा दर्शन की प्राप्ति का रास्ता सफल हो सके, ऐसे पुण्य को हम कहते हैं सातिशय पुण्य। ये सारा जगत जिस पुण्य की बात करता है, वह पुण्य तो मनुष्यों की अपेक्षा अमेरिका के कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा उपलब्ध है। मैं तो जब अमेरिका जाता हूं और वहां लोगों को ये बात समझाता हूं, तो उनसे कहता हूं कि भाई साहब, तुमसे अधिक पुण्यशाली भाग्यशाली तो तुम्हारे कुत्ते बिल्ली हैं। जिस एयर कंडीशन गाड़ी में आप लोग बैठते हैं, उसी एयर कंडीशन गाड़ी में आपका एक कुत्ता भी बैठता है। जिस एयर कंडीशन मकान में आप रहते हैं, उसी एयर कंडीशन मकान में आपके कुत्ते बिल्ली भी रहते हैं। इतना फर्क है कि आपको वो गाड़ी स्वयं चलानी पड़ती है, ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपके इन कुत्ते बिल्लियों को मुफ्त में ड्राइवर उपलब्ध हैं और एक से एक अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर ड्राइवरी करते हैं, और वे सेठ जैसे पीछे की सीट पर आराम से कुत्ते बिल्ली बैठते हैं और आगे मालिक साहब कार की ड्राइविंग करते हैं, और इसके लिए कुत्ते बिल्ली को कुछ नहीं चुकाना पड़ता। कौन अधिक भाग्यशाली है, मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप गंभीरता से इस बात पर विचार करो कि आपको जो ये सुख सुविधाएं मिल गई हैं, इनको आपने सुख और शांति समझ लिया है, वास्तव में ये सुख और शांति नहीं है, ये समृद्धि और सुविधाएं हैं। आपने समृद्धि और सुविधाओं को सुख और शांति समझ लिया है, लेकिन ये सुविधाएं, ये समृद्धि भी आपको 8 घंटे की कम तोड़ मेहनत करने के बाद उपलब्ध होती है। 8 घंटे तो एकदम लगकर काम करना पड़ता है, और 1 घंटा ऑफिस जाने और आने का, इस तरह 10 घंटे की कठोर मेहनत के बाद यदि सर्दियों के दिन हुए, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सूरज उगने के पहले अंधेरे में ही घर से ऑफिस को भागना पड़ता है, और सूरज डूबने के बाद अंधेरे ही में घर में वापस आना पड़ता है। ऐसी तनतोड़ मेहनत करने के बाद आपको ये थोड़ी सुविधा और थोड़ी समृद्धि प्राप्त हो गई है, थोड़ी सी सुविधाएं और थोड़ी सी समृद्धि प्राप्त हो गई है, और आप फूले नहीं समा रहे हैं। भाई साहब, आपको इतनी मेहनत के बाद मिली है और कुत्ते बिल्ली को बिना मेहनत के मिली है, बोलो ज्यादा पुण्यशाली कौन है? लेकिन ये पुण्य किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पुण्य के उदय से जो भोग सामग्री, जो सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हुई हैं, उनका यदि हम उपभोग करेंगे तो आगे पाप बंद होगा, और उनका त्याग करेंगे तो उनके प्राप्त होने का लाभ ही क्या मिला। यद्यपि हम उसका त्याग करेंगे तो पुण्य होगा, लेकिन फिर उनके मिलने का लाभ क्या रहा, उपयोगिता क्या रही। इसलिए कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उन जिनेंद्र भगवान की भक्ति जिनकी प्रतिमाएं मंदिरों में विराजमान हैं, का फल तो सात ही से पुण्य होना चाहिए कि जिस पुण्य के प्रताप से हमें ऐसे अनुकूल संयोग मिलें कि जिन संयोगों के माध्यम से हम अपने आत्मा का कल्याण कर लें। और वो जैसा कि मैंने कहा, वो सच्चे देव की वाणी, भगवान महावीर की वाणी हो सकती है, वो जिनवाणी हो सकती है, वो सत्शास्त्र हो सकते हैं और उन्हें समझाने वाले सदगुरु हो सकते हैं जो हमें इस बात को समझाएं। तो इस तरह सच्चे देव साहस गुरु का सत समागम ही एक प्रकार से सातिशय पुण्य का फल है। इस सातिशय पुण्य का फल में जो हमें प्राप्त हुआ है देव साहस गुरु, ये भी हमें रास्ता बता देंगे, देंगे कुछ नहीं। भगवान महावीर कहते हैं कि जैनियों के भगवान सुख देते नहीं हैं, शांति किसी को देते नहीं है, बल्कि सुख और शांति को प्राप्त करने का रास्ता बता देते हैं। वो देने वाले भगवान नहीं है, वो सुखी होने का रास्ता बता देने वाले भगवान हैं। इसलिए उन्हें मोक्ष मार्ग का नेता कहा जाता है कि वे सुखी होने के रास्ते पर जीवों को ले जाते हैं, किसी को कुछ देते नहीं है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि सुख और शांति किसी दूसरे के द्वारा दी गई चीज नहीं हो सकती है। ये सुख और शांति कभी दूसरों से भीख में प्राप्त नहीं होती है, वो स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त करनी पड़ती है। चक्रवर्तित्व राज का राज्य तिलक भीख में प्राप्त नहीं होता है, भुजाओं की ताकत से प्राप्त करना पड़ता है, भीख में तो झूठी रोटियां ही प्राप्त होती हैं। इसलिए कहते हैं यदि हमें भगवान बनना है, यदि हमें सुखी होना है, यदि हमें सच्ची शांति की प्राप्ति करनी है, तो वो स्वयं के सहारे से ही होगी, दूसरे के सहारे से नहीं। भगवान महावीर कहते हैं यदि तुम्हें भगवान बनना है तो मेरी तरफ मत देखो, स्वयं की तरफ देखो। भगवान की सेवा करने से भगवान दास बना करते हैं, भगवान नहीं। भगवान बनना है तो निज भगवान जो आत्मा है अपना, उसकी तरफ देखो, उसे जानो, उसे पहचानो, उसमें ही जम जाओ, उसमें ही रम जाओ, तो तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। यदि प्रधानमंत्री बनना हो किसी को तो वो क्या करे, प्रधानमंत्री की सेवा करे, प्रधानमंत्री को खुश करे। प्रधानमंत्री की सेवा करने से, प्रधानमंत्री को खुश करने से हो सकता है उनके हम चपरासी बन जाएं, हो सकता है क्लर्क बन जाएं, हो सकता है जो हमें और अपना असिस्टेंट बना लें, सहयोगी बना लें, लेकिन कम से कम कोई प्रधानमंत्री हमें प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएगा। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, जनता जनार्दन बनाती है। ये तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसका राज है अभी, क्या कहा, कांग्रेस का। ये भी सुनना चाहता हूं मैं, हिंदुस्तान में जनता जनार्दन का राज है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि जनता जनार्दन का राज है। जनार्दन माने क्या होता है, भगवान। तो हमने जनता को जनार्दन कहा कि नहीं कहा, जब मैं कहता हूं कि हम स्वयं भगवान हैं तो लोग कहते हैं वाह अब ये भगवान बन गए, और लोगों को ये बात सहज गले नहीं उतरती है। लेकिन मैं नहीं कहता हूं, हमारा संविधान कहता है कि हर आदमी वो जनार्दन है, जनता माने प्रत्येक व्यक्ति, उसको जनार्दन कहा ना, तो जनता को जब जनार्दन कहा तो वो भी तो आत्मा को ही परमात्मा कहा है। प्रत्येक प्राणी भगवान है, यही बात तो इनडायरेक्ट वे में आ गई है ना। तो कहते हैं प्रधानमंत्री बनने का उपाय प्रधानमंत्री की सेवा करना नहीं है, जनता जनार्दन की सेवा करना है। ऐसे ही भगवान बनने का उपाय किसी भगवान की सेवा करना नहीं है जो पर्याय में प्रकट रूप भगवान है, बल्कि जो अपना आत्मा है, जो स्वभाव से भगवान है, यद्यपि अभी पर्याय में भगवान नहीं है लेकिन भगवान बनने की उसमें पूरी शक्ति है, ताकत है, उस भगवान आत्मा की सेवा करने से भगवान बनते हैं। और सेवा करने में भी एक बात समझने की है कि पर परमात्मा की सेवा, उनकी पूजन भक्ति इसके माध्यम से की जाती है, अर्घ चढ़ाकर की जाती है, लेकिन निज भगवान आत्मा की सेवा पूजा भक्ति और अर्घ चढ़ा के नहीं की जाती है, हाथ पैर जोड़ के नहीं की जाती है, उसके चरणों में माथा रगड़ने से नहीं की जाती है। तो कैसे की जाती है कि अपने आत्मा को जानना, देखना, उसमें अपनापन करना, यही उसकी पूजा और भक्ति और आराधना है। तो जब तक यह आत्मा स्वयं को जानेगा नहीं, स्वयं को पहचानेगा नहीं, तब तक वो पर्याय में भगवान नहीं बन सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि ये बात यद्यपि परम सत्य है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है, और यदि वो अपने को जाने, अपने को पहचाने और अपने में ही जम जाए और अपने में ही रम जाए तो पर्याय में प्रकट रूप से भी परमात्मा बन सकता है। ये अपने को जानना, इसको शास्त्रीय भाषा में सम्यक ज्ञान कहते हैं। अपने को पहचानना और ऐसा जानना कि यही मैं हूं, ऐसा अंदर में प्रतीति होना, विश्वास होना दृढ़ता पूर्वक, इसको शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं। और जिस भगवान आत्मा को हमने जाना है, पहचाना है, ये जाना है कि यही मैं हूं, अंदर से पूरी दृढ़ प्रतीति और विश्वास हुआ है कि वास्तव में इसके अलावा और मैं कुछ नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, पुत्रादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, धनादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसी दृढ़ प्रतीति जब अंदर में आ जाए तो अपना जो ध्यान है सारे जगत से हटकर उस आत्मा पर आ जाता है। जब वो ध्यान उस आत्मा पर आ जाता है तो उसका नाम है सम्यक चारित्र। और इस तरह है भगवान आत्मा जो स्वभाव से भगवान था, धीरे धीरे प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन जाता है। जैसे खदान में पड़ा हुआ हीरा भी हीरा है, खदान में पड़े हुए हीरे में भी स्वभाव से वैसी ही चमक है जैसी चमक हम एक अंगूठी में जुड़े हुए हीरे में देखते हैं, लेकिन इतनी सी बात है कि वो अभी अप्रकट है, और अंगूठी वाले हीरे की चमक प्रकट है लेकिन उस हीरे में भी अभी विद्यमान है। यदि विद्यमान नहीं होती तो वो चमक आती कहां से। जब हम हीरे को घिसते हैं तो जिस चीज पर घिसते हैं वो चमक उसमें से नहीं आती है, वो हीरे में ही होती है और वो हीरे में से निकलती है। जिस घंटी पर अपन घिसते हैं ना लोहे की, उस घंटी में वो चमक नहीं है, हीरे में वो चमक आई है वो घंटी में से नहीं आई है। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा में जो चमक आएगी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अतिंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होगी, अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, वो सब उस भगवान आत्मा के अंदर ही विद्यमान है जो अभी दिखाई नहीं देता है। इसलिए शास्त्रों में आत्मा से परमात्मा बनने की विधि बताते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा लिखा है। मोक्ष माने भगवान बनना और उसका उपाय माने रास्ता, मोक्ष मार्ग। वो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और जैसा कि यह प्रश्न अपन ने खड़ा किया था कि यदि मैं स्वयं भगवान हूं, यदि मैं आनंद का रसकंद हूं, यदि मैं ज्ञान का घन पिंड हूं, यदि मैं स्वयं स्वभाव से अनंत शक्तियों की सामर्थ्य से भरा हुआ हूं, तो फिर पर्याय में अनंत दुख कहां से देखने में आ रहा है? फिर आत्मा अनंत दुखी क्यों है? तो उसका एक ही उपाय यह है कि यह उसे पता नहीं है कि मैं स्वयं क्या हूं। जैसे कि अपन ने कल उदाहरण देके बताया था कि उस रिक्शे वाले के करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये रुपया मेरे हैं, इसलिए उन रुपयों के होने पर भी रुपयों से प्राप्त होने वाला जो हमें साधन है, रुपयों से प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं हैं, वो उसे प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इसलिए ये सिद्धांत निष्कर्ष के रूप में निकलता है कि होने से कुछ नहीं होता जब तक उसका हमें पता नहीं हो। और इससे भी एक आगे बात है जो कल कही गई थी कि यदि हमें किसी बाहरी माध्यम से पता भी चल जाए तो भी यदि हमें उस पर विश्वास ना हो, अंदर से प्रतीति नहीं जगे, तो पता होने पर भी उसका लाभ हम अपने जीवन में उठा नहीं सकते। जैसे कि वो रिक्शे वाले को अखबारों के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से यद्यपि ये पता चल गया था कि मेरे करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, लेकिन अंदर से एक सल बनी रही कि मैंने तो जमा कराई ही नहीं है, और बिना जमा कराए किसी के बैंक में पैसा हो सकते हैं, ऐसी कल्पना उसके दिमाग में थी ही नहीं, इसलिए वो पैसा लेने नहीं गया और सुख सुविधाओं से वंचित रहा। इसी प्रकार यह भगवान आत्मा को सर्वज्ञ भगवान की वाणी से सुनकर, आकाशवाणी से सुनकर और शास्त्रों में पढ़कर यह पता भी चल गया कि ये मैं स्वयं भगवान हूं, आत्मा स्वयं परमात्मा है, लेकिन अंदर से ऐसी जागृति नहीं आई कि जिस आत्मा को परमात्मा कहा जा रहा है वो आत्मा वास्तव में मैं ही हूं। समझा, कोई आत्मा होगा तो आत्मा की बातें तो बहुत की, लेकिन उसमें अपनापन नहीं आया, उसे अपना नहीं जाना, उसका ध्यान नहीं किया। वास्तव में हम जितनी भी बात करते हैं, जितना भी हम आत्मा को जानते हैं, वो वास्तव में आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं। आत्मा जानना अलग बात है और आत्मा के बारे में जानना अलग बात है। हो सकता है हम घंटों आत्मा कैसा है ये सब बताते रहें, लेकिन वो आत्मा क्या है हम नहीं जाने। ये हमारा ज्ञान ऐसा ही होता है कि जैसे एक कैंसर का डॉक्टर है, लेकिन उसे कभी कैंसर हुआ नहीं है, उसने शास्त्रों में पढ़ पढ़ करके एक कैंसर की बीमारी की बारीकियों को जाना है, और ये भी जाना है कि उसे बहुत दुख होता है जिसको कैंसर होता है, फिर भी जैसा दुख का अनुभव कैंसर के उस मरीज को है, वैसा अनुभव उस डॉक्टर को नहीं होता। ऐसे ही हमने भगवान की वाणी में सुनकर पढ़कर आत्मा के बारे में तो जाना, लेकिन आत्मा को जानने का जैसा आनंद आत्मा के अनुभवी ज्ञानी धर्मात्माओं को आता है शास्त्रों से पढ़कर और गुरु मुख से सुनकर वैसा आनंद नहीं आता है, तो वैसा आनंद हमें कैसे प्राप्त हो, कब प्राप्त हो, इसकी चर्चा कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देखें।